نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، اس وحی کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی اس قرآن میں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہاں اس سے پہلے آپ انجان لوگوں میں سے تھے. یہ ہے اس سوال کا جواب. یاد رکھیے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ عرب لوگ جو تھے وہ بادشاہوں سے اور ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر تھے. حضرت یوسف کا نام بھی ان کے لیے عام نہیں تھا. کچھ نبی ہیں نا، جیسے حضرت نوح، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ عرب کی سرزمین میں آئے تھے. حضرت شعیب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عرب میں، ان کے بیچ میں کوئی نہیں آیا. عربوں کو پتا تھا ان سب کا، حضرت نوح کی کہانیاں، قوم صالح، مدین، یہ سب قصے پتا تھے. شام تجارت کے لیے جاتے تھے، رستوں میں ان کی وادیوں کو دیکھا کرتے تھے. لیکن حضرت یوسف کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا. یہود کو بڑا حسد تھا اللہ کے نبی پر، کہیں نہ کہیں کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے تھے کہ جس سے لوگوں کے دل میں اللہ کے نبی کا مقام کم ہو. انہوں نے جا کے اپنی کتابوں کی روشنی میں حضرت یوسف کا قصہ جب پڑھا، بدل تو اس کو چکے ہی تھے، تو آپ کچھ مکہ والوں کو کہا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے تو آؤ کہ یہ یوسف کا قصہ کیا ہے، اور وہ تو مصر میں کہاں آ گئے، وہ تو شام میں تھے. تو اس کے جواب میں یہ وحی اتری تھی کہ اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ احسن القصص ہے. دیکھیں یہاں اس قصے کو احسن القصص کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قصہ احسن ہے، بعض کہتے ہیں بیان کرنے کا انداز احسن ہے. کیوں احسن القصص ہے؟ اس لیے کہ اس میں حسن کی باتیں ہیں. کون سا حسن؟ یوسف کا حسن، اتنا خوبصورت ہے یہ وہ. اور ہمارے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو صورت یوسف کو خوبصورتی کے لیے پڑھتے ہیں، پریگننسی میں پڑھتے ہیں تاکہ بچہ بڑا پیارا ہو. بھی پیارا بچہ ہوگا تو نصیب پیارا ہو جائے گا. اور شادی پہ پڑھتے ہیں لڑکی کے لیے تاکہ دلہن خوبصورت لگے. پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے. میں کہتی ہوں اپنی بچی کو شادی سے پہلے سورۃ یوسف کی تفسیر پڑھا دیں، تحفے میں دے دیں، ریکارڈ کر کر کے نا یہ بانٹیں. یہ بیسٹ ہے شادی کا تحفہ. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں رشتوں کے جو اونچ نیچ دکھے گئے، اگر ایک بچی کو ماں باپ نے یہ سکھا دیا تو پھر یہ گھر نہیں ٹوٹیں گے. ایک سال کے اندر لڑکی واپس نہیں آئے گی، اور لڑکا اپنی بیوی کے اوپر حکمران اور جابر بن کے اس کا مجازی خدا نہیں بنے گا. اس صورت کے اندر حسن کون سا؟ پہلی بات دیکھیے کہ قصے کہانیوں کو جب بھی دیکھتے ہیں تو عموماً اس کے اندر عشق اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے رومیو جولیٹ ہے اور عشق لیلا اور مجنو ہے، اسی طرح ہمارے ہاں ہیر رانجھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ہے، آپ کو اس میں محبت کی چاشنی دکھے گی. لیکن فرق کیا؟ دنیاوی فکشن، دنیاوی ڈرامے، فلمیں جن کا تھیم ہی لو سٹوری ہوتی ہے، وہ اخلاق کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں. یہ اخلاق کو سنوارنے والا. اس میں ہیرو کو ایک من چلا انسان بنا کے دکھاتے ہیں. ہیرو ہیروئن بڑی محنت سے گھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آدھی رات کو تھک تھک جوتوں سینڈل پکڑ کے وہ بھاگ رہی ہے، اور سارے آڈینس کی نظریں ہوتی ہیں اللہ کرے گھر سے بھاگ جائیں، ابا کی آنکھ نہ کھلے. اور دکھاتے کیا؟ مجھے چند عرصہ ہوا کسی نے بتایا، بڑی میرے لیے ایک انفارمیشن تھی. کبھی جب کبھی ہم نے ایسا کوئی وقت دیکھا ہوگا تو ہم دیکھتے تھے کہ جو کچھ بھی لڑکے لڑکیوں کو کرتے دکھاتے تھے نا، اینڈ پہ ریزلٹ کیا دکھاتے تھے؟ کہ ماں باپ ٹھیک تھے، ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور ارینج میرج بہت اچھی ہوتی ہے، اور دس اینڈ دیٹ. آپ نے بھی ایسے کبھی دیکھا ہوگا. کسی نے مجھے خبر دی کہ اب یہ آپ کوٹ کر دیا کریں، یہ میری طرف سے مصدقہ خبر ہے، کہ اب جو ڈرامے اور فلمیں ان کا تھیم کیا دیا جا رہا ہے کہ نہیں، بچوں کا فیصلہ ٹھیک تھا، یہ گھر سے بھاگ کے الگ زندگی بسر کریں نا، دیکھو خوش ہیں. اور وہ ابا نے زبردستی شادی کی تھی تو شادی نہیں نبھی اور ختم ہو گیا. نہیں، دنیا اخلاق کو بگاڑتی ہے. جو گندگی ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں بالکل اپوزٹ دکھے گا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ عموماً آج کے دور میں جو گندگی ہمیں دکھتی ہے نا، اور یہ کسی بھی سوسائٹی کے زوال کی علامت ہوتی ہیں، کہ مرد نہیں عورتیں دل پھینکنے لگے. عورت اپنے نمائش کے ساتھ دکھائے کہ مجھے خدا کے لیے دیکھ لو، اللہ کے لیے میری پتلی کمر دیکھ لو، اللہ کے لیے میرے ابھرے ہوئے جسم کو دیکھ لو. یہ کسی سوسائٹی کا ڈکلائن ہے. آج عورت جی اتنے بڑے بڑے بینروں پہ جو چڑھ کے کھڑی ہو گئی، کیوں دکھاتی ہے؟ کہ میں خدا کے لیے مجھے دیکھ لو، ایسے لگتا ہے میرا شوہر مجھے نہیں دیکھتا، پلیز تم مجھے دیکھ لو. کبھی سوچئے، اللہ نے جو انسان کو فگر دیا اور ہم عورتوں کو دیا، مقصد کے لیے دیا نا. اگر اللہ نے عورت کو سینہ دیا تو نسلوں کی خوراک ہے اس میں. اگر عورت کے جسم میں نزاکت ہے تو وہ شوہر کا حق ہے. اگر اللہ نے ایک عورت کے اندر بننے ٹھننے، اچھے کپڑے پہننے، اس کے جسم میں کشش رکھی، اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں، کیونکہ اللہ نے نسلیں پیدا کرانی تھی. اگر عورت میں کشش نہ ہوتی تو کوئی مرد اپنی بیوی سے بات نہ کرتا اور نسل نہ پیدا ہوتی. لیکن جب وہ چیز اب غیر سے لینے چلے جائیں، بات کہتے ہوئے حیات دی ہے، لیکن جب حقیقت میں دیکھیں جو صورت حال ہے وہ ایسی ہے. कभी कोई बीवी अपने शौहर से जो चाहती है वो कभी बाप से चाहेगी? प्लीज़, अब मेरा शौहर तो मेरी बात नहीं मानता, आप मेरी मान लें। बेटे से चाहेगी तो क्या ड्राइवर से चाहेगी? तो क्या किसी बाहर गली में खड़े में से चाहेगी? क्या आज औरत ने इस तरह अपने आप को एक्सपोज करके यही पैगाम नहीं देने शुरू कर दिए कि खुदा के लिए मुझे देखो, मुझे कोई नहीं देखता? और जहां से वो चीज दिखनी थी, जहां से कुछ मिलना था, जहां से आपके जिस बात की कोई ना कोई तशफी होनी थी, उधर आपके पास मिजाज इतना आपका बिगड़ा हुआ है कि शौहर को देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है। और चढ़े क्यों ना, सारा दिन जिहाद करके आते हैं, 8 घंटे की शॉपिंग में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो और क्या होगा? फिर आके मियाँ को खुश करो, और आप 4 घंटे इतनी मुश्किल से काम वाला जोड़ा पहन के संभाल के बैठे, गाड़ी में बैठते ही ज्वेलरी उतारना शुरू हो जाती हैं औरतें, जूता उतारा, ज्वेलरी उतारी, और लुटी पुटी मियाँ के सामने आती कहते ठहरो कपड़े बदल लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। क्या आपके नसीब में वही 4 साल पुराना जोड़ा है जिसका रंग भी उड़ चुका है? गलत जगह से गलत चीज़ मिलेगी। हजरत यूसुफ के इस किस्से में अल्लाह हमें ये दिखा रहा है कि एक चीज जो इंसान के लिए नेमत होती है ना, वो फितना कैसे बनती है। कुल्लु ज़ी नेमते महसूद, हर नेमत वाले से हसद जरूर किया जाएगा। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने जाहरी हुसन भी दिया था और बातनी भी। मजे की बात देखिए कि पूरी सूरत में कहीं एक बार भी हजरत यूसुफ के जाहरी हुसन का किस्सा नहीं है। बहुत है तो उन औरतों की बात है कि वो फरिश्ता लगता है, दैट्स इट। पूरी सूरत में इन्नहु मिनल मुहसिनीन वमन यत्तकी वयस्बिर, सबर, तकवा और हुसन, बातनी हुसन का तذکرہ है। इसको हसनुल कसस इसीलिए कहा गया कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का अंदर खूबसूरत हो जाए, आप चाहते हैं ना आपके शौहरों की नजरें पाक हो जाएं, तो आप उनको सूरह यूसुफ पढ़ाएं। आप कहेंगे अच्छा इसका तवीज़ घोल के पिला दें, अच्छा इसका खूबसूरत सा कोई फ्रेम बनवा के लगा दें, नहीं, इसका पैगाम दें। इसमें बहुत सारे इबरत की बातें हैं, बहुत कुछ है। इसको अल्लाह ताला ने इतने प्यार से बनाया कि देखने से पता चलता है। फिर इस सूरत को आसनुल कसस इसलिए कहा गया कि इसमें मुआमलात का बड़ा हुसन दिखेगा आपको। दुश्मनों को कैसे दोस्त बनाओ, कैसे कुएं में फेंकने वालों को तख्तों पर बिठाओ, कैसे जिंदगी में लोग तुम्हें चोटे लगाए और तुम उनसे प्यार करो, इस तरह से किल विद काइंडनेस, इस तरीके से करो कि वो कहना शुरू हो जाए कि यूसुफ आप सच्चे थे, हम झूठे हैं। ला तसरीब अलैकुमुल यौम की पुकारें आपको इसमें दिखेंगी, इसलिए यह अहसनुल कसस है। झूठी कहानियों की बजाय बच्चों को सच्ची कहानियां सुनाएं और देखें। आप कह सकते हैं कि यह अहसनुल कसस इसलिए कि इसमें ब्यूटी टिप्स हैं। आज देखिए कि लड़कियों को बहुत शौक होता है अमूमन, अब तो माशाल्लाह औरतों को भी है, और अब तो खैर से बूढ़ों को भी है। आज के दौर का जो बहुत बड़ा एक बोता है ना, वो ब्यूटी है, ब्यूटी टिप्स। कोई मलाई मल रहा है मुंह पे, कोई क्रीम मल रहा है, कोई थूम मल रहा है, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पलकों पे कुछ लगाते हैं, यहाँ कुछ लगाते हैं, जरा गलती खा गए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ये ब्यूटी टिप्स सिखाती है। मैं सोचती हूँ कि आप अगर अगली क्लास से पहले जिसको भी कहना चाहिए ना कि जो ब्यूटी कॉन्शियस है ना, होना चाहिए, बुरी बात तो नहीं है, अल्लाह तो खुद ब्यूटी कॉन्शियस है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, उसने खूबसूरती को पैदा किया, मना नहीं है, गलत जगह पे उसका इजहार मना है, अल्लाह मना नहीं करता। तो ये सूरत आपको खूबसूरत बनना सिखाती है। इसमें से इबरत लेते हैं इंसान कि अल्लाह ने कितने प्यारे तरीके से पैदा की। गलत चीज़ें सुन के बैठते हैं आप, देखिए फिल्म देखिए, 3 घंटे की फिल्म होती है ना मोस्टली, एंड ऑफ द फिल्म स्टोरी क्या वही जो थी, और सर में भी दर्द हो सकता है, और कितना फैशन और कितनी गंदगी लेकर हम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुरान आप 3 घंटे पढ़ के उठे तो आपका दिल यूं निचोड़ रहा होता है जैसे तौलिए में से पानी निचोड़ता है, इस तरह आप रहमत में। एक आखिरी बात करके आगे चलते हैं किस्से पे, कि अहसनुल कसस कहते हैं कि इस किस्से को वजह यह है कि ये अल्लाह के नबी के उस वक़्त के हालात से बहुत मैच था। इधर दारुल नदवा है जिसमें अल्लाह के नबी के कत्ल की कोशिशें, तो अभी इधर आप देखेंगे कि भाई अपने भाई के कत्ल की कोशिशें कर रहे हैं। इधर भाई कुएं में फेंक रहे हैं, तो उधर गारे सौर में आपको डाला गया। फिर आप देखिए कि रफ्ता रफ्ता इक्तदार हासिल होगा। हम हजरत यूसुफ की जिंदगी में यूं ग्रे एंड ब्लैक के शेड्स देखेंगे, कभी वाइट और कभी बिल्कुल ब्लैक और बीच में ग्रे शेड। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है। तिलकल अय्याम नुदा बिलुहा बैनन नास, ये दिन हम लोगों के बीच में फिरते रहते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना ले जाया गया, और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद 2 साल के अंदर मक्का फतह हुआ और आपको रूज हासिल हुआ। यानी इतना खूबसूरत तकाबुल है कि आखिर फतह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि आज मैं तुम्हें वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई बात नहीं है। और आप इस किस्से को इस तरह सुनिए कि बाद में जहां भी जिससे बयान करना चाहें कर सके, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लमिनल गाफिलीन की बात भी समझ आ गई कि जब तक अल्लाह ताला कोई वही नहीं देता था, अल्लाह के नबी को भी उसकी खबर नहीं होती थी। अब किस्सा शुरू होता है। मेरा ख्याल है कि जब शुरू में आपको तर्जमा सुनाया गया तो काफी हद तक तो किस्सा क्लियर है, लेकिन हम गो थ्रू करते हैं। इस काल यूसुफ ली अभी ही, जब यूसुफ ने कहा अपने बाप को, बाप कौन थे? अब अगर लफ्ज़ों पे देखें ना तो इसके ज़मायर वहीं लिख लें। बेस्ट तफसीर क्या होती है कि आयत के ऊपर ही उसके ज़मायर लिख लें। इस काला, जब कहा, कब कहा? 7 से 8 साल की उम्र थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, रिवायत में आता है, और बातों से भी लगता है कि भोलपने की उम्र होगी। ना तो बहुत स्ट्रांग थे, ना इतने बच्चे थे कि बात ना समझे। यूसुफ कौन थे? नबी के बेटे और नबी के पोते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगर नसब को जोड़े तो हज़रत इब्राहिम से जुड़ता था। करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, शरीफ बच्चे का बच्चा। यूसुफ के बाप का नाम था याकूब। ली अभी ही, अभी के नीचे लिख लीजिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी एक औरत से जब हुई, उसके दो बच्चे थे, और उसके बाद कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया या वट एवर जो भी वजह थी कि जब उन्होंने दूसरी शादी की तो उसमें से उनके 10 बच्चे हुए। यानी कहानी इस तरह से बनती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सगा भाई था बिन्यामीन और बाकी 10 सौतेले भाई थे। यूसुफ अखलाक में, किरदार में, मिठास में बड़े मीठे थे। हुआ क्या? बचपन में अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया। और याद रखिए, अल्लाह जब अपना पैगाम किसी दिल पर डालना चाहते हैं ना, उससे पहले सच्चे ख्वाब ज़रूर दिखाएगा। अल्लाह के नबी को भी नबूवत से पहले सच्चे ख्वाब आना शुरू हो चुके थे, तो उन्हीं ख्वाबों में से नबूवत का 46वां हिस्सा, 46 पार्ट ऑफ नबूवत, सच्चे ख्वाब आना। ख्वाबों पे बात होगी आगे जाके भी, यहाँ भी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया गया। क्या ख्वाब था? अब आप देखिए, या अबतीन निराई तो अहदाशर कौकबन, ए मेरे अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को देखा, व शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को, रईतुहुम ली साजिदीन, मैंने उनको देखा खुद को सजदा करते हुए कि वो मुझे सजदा करते हैं। यहाँ पहली बात तो ये जरा समझ लीजिए, बाप बेटे का ताल्लुक। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी बातें अपने माँ बाप से शेयर करते हैं। छोटा सा बच्चा है और उठते ही ख्वाब बाप को सुना रहा है। आज के दौर में माँ बाप की जगह दोस्तों ने ले ली। बाप और बेटा जो है ना, उसका ताल्लुक बताया गया। यहाँ आपको इस किस्से में अपने बच्चों के साथ मामला करना भी सिखाया जा रहा है। आप देखिए कि औलाद की तरबियत का अगर आप रुख देखें ना, तो बहुत छोटे बच्चे, यानी जो बोर्न बेबी से लेके 1 साल 2 साल की उम्र है, ये शफकत और मोहब्बत के होते हैं। प्यार दीजिए, बिगाड़िए ना, लेकिन मोहब्बत दें, क्योंकि जो बच्चे प्यार में पलते हैं फिर वो बाद में प्यार ही बांटते हैं। अगर उस दौर में बच्चे को बहुत रोक टोक किया जाए और उसको चिड़चिड़ कर दिया जाए, जिद्दी बना दिया जाए, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो 3 साल से तकरीबन 5-6 साल का वक्त होता है ना, ये तरबियत का वक्त होता है। इसमें आंखें दिखानी चाहिए, ठीक करो, उठो बैठो, ये करो, यानी हल्की तरबियत होनी चाहिए। जो ही बच्चों के अंदर एक जज्बात उभरने शुरू हो जाए, टीन एज का आगाज हो, तो बच्चों के दोस्त बन जाना चाहिए। इतनी दोस्ती हो कि खुद पूछे कि बेटा आज क्या हुआ, स्कूल गए थे, सुनाओ, फिर बच्चे खुद ही सारी कहानियां सुना दें। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम पहले बच्चों को इतने लाड देखते हैं, 3-4-5 साल की उम्र में सर पे चढ़ा लेते हैं। छोटे बच्चे से सबसे ज्यादा लाड होता है घर में। नतीजा क्या कि जब वो बिगड़ जाता है, अब हमारा सब्र खत्म, वो दूसरों के सामने हमें जूता भी फेंक देते हैं हम पे, तो हम शर्मिंदा होते हैं। फिर जब हम बर्दाश्त नहीं करते ना, तो जूं ही जरा वो समझने की उम्र में आते हैं, तो हर वक्त डांटा डांटी। जहां बच्चे को देखा, ए ये किए, नमाज पढ़ी है, कपड़े पहने, चलो यूनिफॉर्म पहनो, ये करो, इंतहाई नामाकुल हरकत है। माँ बाप और बच्चों में जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं करते ना, तो मान लीजिए कि वो रिश्ता ही सच्चा नहीं है। वो फिर कोई बस एक खून का रिश्ता तो है, वो ताल्लुक का रिश्ता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत के करीब के दोस्त माँ बाप से ज़्यादा करीब हो जाएंगे। एक प्रेजेंटेशन है कि बच्चा टीवी देख रहा है और माँ बार बार उसको कह रही है, बेटा मुझे डॉक्टर पे ले जाओ, ये जाओ, और वो सुन ही नहीं रहा, और वो माँ बेचारी दिल पे हाथ रख के बैठी हुई है। इतने में उसका सेल फोन बजता है, हेलो हाय, फ्रेंड का फोन है। उसने कहा मैं नीचे आया हूँ, चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने। ओके मैं आया, माँ देखती रह गई और उस बच्चे ने चाबी उठाई, नीचे भाग गया दोस्त की तरफ। तो माँ फिर भी दुआ ही देती है कि अल्लाह तेरा भला करे। ये सच है। आज आप देखिए, दोस्त और साथी वैसे ही सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही इसका गलगला नहीं हो गया? इतना इन्फ्लुएंस दोस्तों का, और आज हमने बच्चों का ये राइट समझा हुआ है कि हफ्ते में एक नाइट उसको किसी दोस्त के घर रहना है और एक नाइट उसके दोस्त को रहना है, और स्कूल से बाद भी इनको जाना है। दोस्ती हद की है। बाप ने बच्चे की बात सुनी। दूसरी बात आप देखिए कि बाप अब इस ख्वाब को सुन के कहते क्या है, या बुनैया ला तक्सुस रुया का अला इख्वतिका, ए मेरे बेटे अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। क्यों भाई? फयकीदुल का कहीदा, ये तुम्हारे खिलाफ तदबीर करेंगे। और साथ ही बच्चे का माइंड सेट किया कि देखो भाई बुरे नहीं है, बल्कि इन्न शैतान का नलिल इंसान अदुव मुबीन, शैतान इंसान का वाजे दुश्मन है। यहां आप देखिए कि एक और खूबसूरत बात है कि बाप बच्चे के साथ बच्चा नहीं बन गया। हमारे यहाँ दो इंतहाएं हैं अभी जो हमने डिस्कस की। एक तो ये है कि बाप हर बात में ही बच्चे के साथ इतने करीब हो गए, बच्चा बाप के कंधों पर भी चढ़ गया, बाप को पता ही नहीं ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये भी इंतहा से गुजरी हुई बात है। और दूसरी तरफ इतना तकद्दुस के अब्बा घर में आए और बच्चे दरवाजे के पीछे छुप जाए। यहां आपको फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आपको अपने बच्चों की दोस्त बनना चाहिए, एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, वक्त के साथ जो बंदा अपने रोल को खुद नहीं एक्सेप्ट करता ना, तो लोग छीन के ले जाएंगे आपसे वो चीज। छोटी सी बात देती हूँ मिसाल के लिए। मसलन आप देखिए कि आप कल तक इस घर की वारिस थी, मैं आपकी बात नहीं करी जिनका घर है, जिनके भी घर है हम अपने अपने घरों को सोच लेते हैं। एक औरत बिला शिरकत गैरे अपने घर की मालिक होती है, यहाँ फानूस रख दें, यहाँ कुर्सी रख दें, मेज रख दें, ये पके वो पके। आज आपके घर में बहू आ गई, चले बेटी को ले ले, बेटियां तो आजकल माशाल्लाह मेहमानों की तरह होती हैं घरों में, मतलब उनको तो खाने पे पता चलता है आज पक क्या रहा है। ये भी हमारी तरबियत का बहुत बड़ा नक्श है। बहरहाल ये सारी चीजें तो चलती है। आप खुद देखें कि इस वक्त अब कोई और भी मेरे घर में इन्वॉल्व है, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाए। आपने अगर फूलों की पत्तियों को देखा हो ना, तो पहले कली होती है, सब पत्तियां यूं होती हैं, आहिस्ता से जब वो कली खुलती है ना, तो जो अंदर की पत्तियां खुलती है ना, तो पीछे की साथ साथ पीछे होती जाती हैं। लकड़ी की कोन होती है, फर्न होता है, बहुत ही खूबसूरत उसका एक एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया कि वो कोन के अंदर यूं लकड़ी की स्टिक्स होती हैं, जो ही अंदर से और लकड़ियां आती है ना, तो पिछली पीछे जाके सीधी खड़ी हो जाती हैं और वो पिछलों को प्रोटेक्ट करती हैं। बड़ों का रोल क्या होता है कि वक्त के साथ साथ अपने जवान होते हुए बच्चों को, मतलब बाप है उसको पता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, खुद लाइए उनको काम में, आओ बेटा दुकान पे बैठो, आओ मेरे साथ काम पे बैठो, खुद पीछे प्रोटेक्शन बन जाए और उनको कुर्सी पे बिठाएं, काम करो, चेक करो, उनको देखो, ताकि आपकी जिंदगी में ट्रेन हो जाए। मेरी जिंदगी में लोड़ खड़ा है तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मेरे बाद ठोकरे खाओगे तो तुम्हें कौन पकड़ेगा। इसी तरह माँ को अपनी बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए शादी से पहले। ये जो हम पे जुल्म टूटता है ना शादी के बाद, पता चलता है कि लड़कियों को एक तो खुशी बड़ी होती है पहले शादी की, क्योंकि शादी क्या है जी, कपड़े जेवर खाना पीना। अगर आपको लगता है ना कि अब आपके सामने कोई और आ चुके हैं, आपकी बेटियां हैं, आप उनको दोस्त बनाइए। आप देखिए कि यंग होती हुई बच्ची जो है, उसको अपनी माँ के साथ किचन में अगर काम करने का मौका मिल जाता है, कोई बिगाड़ेगी, कोई संवारेगी, फिर सही हो जाएगी। पहले ऐसे ही होता था, माँ रोटी पका रही है तो बच्ची को भी पेड़ा दे दिया, अगर वो सब्जी बना रही है तो उसके हाथ में भी धनिया दे दिया। बच्चियां सीख लेती थी प्रैक्टिकली, शादी से पहले वो एक घर चलाने के काबिल होती थी। आज क्या, लड़की को पहले तो हम पढ़ाई के जुम्मन में एक लड़का बना के पालते हैं, इसने पढ़ना है, इसने पढ़ना है। बड़े फख्र से लड़कियां कहती हैं हमें तो दालों के नाम भी नहीं आते, और जी हमें तो पता ही नहीं है कि अंडा कैसे तोड़ते हैं। तो फिर शादी के बाद जुल्म होता है, वो आपकी बेटी थी, उधर जाके वो बहू भी बनी और बीवी भी बनी, फिर लड़कियों पर डिप्रेशन होता है। वजह क्या है कि हमने उनको नहीं सिखाया। इसी तरह अपने साथ कीजिए। आपके घर में बहुएं आ रही हैं ना, कोई बात नहीं, आने दीजिए, खुश हो कि आपके घर कोई आया है, उनको आगे करें, आप थोड़ा पीछे हो जाए। ऐसे ऐसे आप पीछे प्रोटेक्शन में रहें, खराब करें तो बताइए कि बेटा ये ऐसे नहीं वैसे, और एकदम उनको पेश करें, आप फूल की तरह खिलेंगे। जो लोग आखिरी वक्त तक चाबियों का गुच्छा नहीं छोड़ते, चाहे पकड़ा ना जाए और अपनी कमर झुक जाए, लेकिन वो गुच्छा नहीं छोड़ना, वो घर कभी खुशगवार नहीं होंगे। जिंदगी में अपने बच्चों को लाएं। और मैं सोचती हूँ, अगर अपनों से नहीं आपने अंडरस्टैंडिंग करनी तो गैरों से आप कहाँ करेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे का ख्वाब भी सुनते हैं और साथ ही साथ उनको बुरे भले से आगाह करते हैं। अब यहाँ बाहर देखने में ऐसे लग रहा है कि वो अपने बच्चे को खिलाफ कर रहे हैं अपने भाइयों के, नहीं नहीं नहीं, खिलाफ नहीं कर रहे। इतना शैतान अलिल इंसान यदुव मुबीना, क्योंकि शैतान को पता है कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई डलवा कर जो मैं काम करवा सकता हूँ वो उनके बीच में मोहब्बत के साथ नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये याद रखिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बाप के साथ एक नबी भी थे, और नबियों के साथ अल्लाह की बुरहान होती है। अल्लाह ने उनको ख़ास तरबियत का अंदाज सिखाया होता है। हज़रत याकूब अपने बेटे के ख्वाब से समझ गए कि यह अनयूजुअल ख्वाब है, ये मेरे बच्चे को ख्वाब जो आ रहा है ये आ नहीं रहा, ये दिखाया जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं वकजालिक यजतबीक रब्बुका, और इसी तरह अल्लाह तुझे चुनेगा। यजतबी जबा यजबी मुजतबा मुस्तफ़ा, ये लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं कि अल्लाह तुम्हें चुनेगा बेटा, गम ना करो। व युअल्लिमुक मिन तावीलिल अहादीस, और तुम्हें बातों की तावील सिखाएगा। व युतिम्मु नेमतहु अलैक, और तुम पर अपनी नेमत पूरी करेगा, और सिर्फ तुम पर नहीं। वाला आले याकूब कमा अतम्महा अला अबावैका, और आले याकूब पर भी पूरी करेगा जैसे उसने तेरे बापों पे की। मिन कब्ल इब्राहीम व इसहाक, बाप इब्राहीम और इसहाक उनके बच्चे पे। इन्ना रब्बक अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला। क्या पता चला कि हज़रत याकूब समझ गए कि मेरा बेटा जो है ये कल नबी बनेगा। अल्लाह ताला ने ये ख्वाब दिखाकर इनका मुस्तकबिल दिखाया। दूसरी बात यह है कि औलाद को ज़रूर आगाह करना चाहिए इस बात से कि अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है तो उसको एक्सपोज ना करें। इसमें एक इशारा मिलता है, हमें कोई ख्वाब आ जाए ना, मैं कहती हूँ ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांट ही रहे हो ना, तो हम कहते हैं तुम्हें पता है मुझे नबी ख्वाब में आए थे, मैं मक्का में गई थी, चाहे वहाँ बुरे हाल में देखें। याद रखिएगा एक बात, ये सेल्फ वर्शिप होती है, अपनी खूबियों का इजहार। बस तुम्हें क्या बताऊं, अब मुझे तो बड़े इशारे होते हैं, बस वैसे तहज्जुद मैंने अब शुरू की हुई है, बस क्या बताऊं। नेवर नेवर डू दिस। जब भी कोई काम नया नया शुरू करे ना नेकी का, मसलन आपने तहज्जुद शुरू की है, किसी को ना बताएं। कुरान हिफ्ज करना शुरू किया, कभी ना किसी को बताएं। क्लास शुरू की है, खुदा के लिए ना बताएं। हम जब दूसरों को बताते हैं ना, आप देखें ना कि पकते चावलों को हवा लग जाए तो वो गलते ही नहीं है, या अगर आप बार बार किसी ओवन का चूल्हा खोलें, ढक्कन खोलें, बंद करें, स्टीम खोलें, खाना खराब होता है। ये जो नया नया ईमान और नई नई नेकियां आती है ना, ये छुपाने वाली होती हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना छोटा बर्तन जल्दी भर जाता है और खाली बर्तन ही बचता है। ये हम थोड़ी थोड़ी नेकियां या थोड़ी थोड़ी दौलत आती है और हम उसका एक्सपोजर शुरू कर देते हैं ना, उससे खराबी पैदा होती है। नेमतों को छुपाइए। आज हाल के बिल्कुल अपोजिट कहते हैं ना, हुसन दे तो नखरा आ जाता है, शक्ल सूरत वाजबी है तो शायद दबे बैठे रहे, फिगर अगर ज़रा ख़राब है तो बैठे रहे, और ज़रा फिगर अच्छा हो तो फिर फितना बन जाती है ये चीज़। आज आप देखिए कितना एक्सपोजर है, छोटा बच्चा, मासूम फूलों जैसा बच्चा, आप सर से पांव तक उसको जब एक रंग का बना के फूल बना के पेश करते हैं, फिर नज़र लगेगी कि नहीं? फिर आप कहते हैं जी फलां ने देखा इसको नज़र लग गई। डोंट डू दिस। अपने आप को खुश करें, देखें खुश अपनी नेमतों से। आज देखिए जितना डेकोरेशन पे लगता है क्या उतनी ज़रूरियात पे भी लगता है? जितना हमारा खर्चा ऊपर सजावट पे लगता है कि उतना कपड़े पे भी लगता है? हालात के मुताबिक इंसान करे, लेकिन इसको अपनी जिंदगी का शुआर नहीं बनाना चाहिए। फिर अगली बात देखिए, ख्वाबों की थोड़ी सी बात है। हमारे कल्चर में खास तौर पे ख्वाब तो बहुत ही मारूफ हैं, तो ख्वाबों के बारे में जहन में रखिएगा कि नंबर एक ये कि ख्वाब हकीकत है। आप इस वक्त बातें कर रहे हैं, जाग रहे हैं, इस तरह जब हम सोते हैं तो हमारा जहन काम करता रहता है। अमूमन तीन किस्म के ख्वाब होते हैं। एक वो ख्वाब होते हैं जो अल्लाह दिखवाता है, जैसा कि ये ख्वाब था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाए जाते थे। आपको भी कभी कोई दिखाया गया होगा। अक्सर लोग बताते हैं कुरान की तालीम से पहले ख्वाबों का इल्म एक पूरा इल्म है। वैसे बहुत ज़्यादा ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए, जो मैं आपको रिकमेंड करूँ, बस इस पर सानवी सी बात करें। लेकिन यह कि अगर आपको शौक है तो इमाम इब्ने सीरी हैं मारूफ, जो ख्वाबों की ताबीर के लिए, उनकी किताब भी है किताब रोया, तो ख्वाबों का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। लेकिन याद रखिए, पहली बात है कि अच्छे ख्वाब जो है, यानी आपने ख्वाब में देखा आप जन्नत में हैं, मिसाल है आपने किसी जन्नत की नहर का पानी पीते देखा, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये ख्वाब जो होते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। नेक को भी आ सकते हैं, बद को भी आ सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपने अगर खुद को जन्नत में देख लिया तो अब आप जन्नती हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारे आप देखिए बाज़वा शाह कादिर का ख्वाब या अब्दुल जलानी का ख्वाब, इस तरह की बातें की जाती हैं। आम लोगों के ख्वाबों की कोई हुज्जत नहीं है। अच्छा ख्वाब दिखे क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्त वो जो समझदार भी हो, ये लिख ले, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनसे दुश्मन अच्छे हैं। समझदार भी हो नंबर एक, दूसरी बात है जज्बाती ना हो, फौरी बात सुन के आगे से ना कह दे बस अब तो ये होने वाला है। ख्वाब कभी भी ऐसे ही बयान नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है कि ख्वाब जब बयान किया जाता है ना तो वो वाकई हो जाता है। परिंदे के परों में होता है, जैसे परिंदे के पर में एक चीज है और जब आप ख्वाब बयान करते हैं तो वो खुल जाता है और वो बात होती है। दूसरा ख्वाब जो है ना वो बुरा ख्वाब है, किसी को कत्ल कर दिया, कोई गंदा ख्वाब देख लिया, जिसमें आप देखिए कि जो वेट ड्रीमिंग होती है ये भी शैतान का ख्वाब है, जो जवानी के साथ लड़कों के जहनों में जो ख्याल होते हैं उसको ख्वाब के जरिए से उनको रिलैक्स कर दिया जाता है। तो ये सब शैतान का असर है, जो जितनी गंदी चीजें देखेगा ऐसी चीजों में उसका ज्यादा रुझान होगा। इससे औसबिल्ला पड़े, किसी को जिक्र ना करें। तीसरे वो ख्वाब होते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे अधूरे ख्वाब। आप वैसे डॉक्टर नहीं बने तो ख्वाबों में आप डॉक्टर बन रहे हैं। आप देखते हैं ना कि कभी एग्जाम होने वाले हैं तो आप ख्वाबों में भी पेपर ही दे रहे होते हैं। शादी से पहले लड़की अपने आप को शादी वाले घर में देख रही होती है। तो ये ख्वाब होते हैं हदीस नफ्स। तीनों बातों को जमा कर लें, अल्लाह की तरफ से कोई शर्त नहीं है कि आपने अच्छा ख्वाब देखा है तो आज ही पूरा हो जाए। उलमाए किराम कहते हैं 40 साल तक लग जाते हैं ख्वाब की ताबीर में। हज़रत यूसुफ जो आज ख्वाब देख रहे हैं ना, ये 40 साल बाद पूरा होगा, और अब्बा ने आज ही कह दिया कि देखो ये किसी को ना बता देना। फिर इसके बाद आप देखिए कि नेक का भी ख्वाब सच्चा हो सकता है और बद का भी। यहाँ हजरत यूसुफ का ख्वाब है जो आगे सच होगा, इसी तरह आगे हमें काफिर बादशाह का ख्वाब पढ़ेंगे जो बिल्कुल सच होगा। तो कभी ख्वाबों की बुनियाद पर कोई बड़े बड़े फैसले ना करें। अल्लाह ताला ने इस बात में हमें ये बात बता दी, बाप ने खामोश करा दिया, बेटे कितने अच्छे थे, बात मान के चले गए, खामोश हो गए। अब ये तो थी ख्वाब की कहानी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अलिफ लाम र, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून। نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.